आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में बाबरी मस्जिद मामले में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से विभाजित एक फैसले में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के जुड़े मामले में की गई अपील को 5 या अधिक जजों की बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मालिकाना हक वाले केस को अधिक जजों की पीठ के पास भेजे जाने की मुसलमान पक्ष की अपील की असली वजह 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में की गई 5 जजों की बेंच की टिप्पणियों से जुड़ी है। 1993 के अयोध्या एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई कुछ ज़मीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसले में अदालत ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म में न ज़रूरी है और न ही धर्म का अभिन्न अंग है। यह अदालत विवादित जगह पर हिंदू मंदिर होने या न होने के बारे में राष्ट्रपति की ओर से किए गए प्रश्न पर भी सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नमाज की आवश्यकता पर की गई इस टिप्पणी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 में आए फैसले और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई याचिकाओं को प्रभावित किया था, और चूंकि इस्माइल फारूकी मामले में 5 जजों का फैसला था इसलिए मौजूदा 3 जजों की बेंच को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठ वकील राजीव धवन अदालत के फैसले से सहमत नहीं है।
जस्टिस नजीर ने सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार कहा है कि अगर आपको डिसाइड करना है कि कोई चीज असेंशियल प्रैक्टिस है, असेंशियल प्रैक्टिस का माने यह है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, तो जरूरी है कि आप देखें तो कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, असेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है। जस्टिस वर्मा की जजमेंट जो थी इस्माइल फारूकी में, उन्होंने तो ये देखा ही नहीं और ऐसे ही बोल दिया कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है। बेसिकली भूषण साहब की जजमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये शब्द जो इस्तेमाल हुए थे वो सिर्फ एक्विजिशन के सिलसिले में नहीं किए गए थे। एक स्टेटमेंट की कि एक मॉस्क एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है, तो लोग मॉस्क बनाते किस लिए हैं? ये जामे मस्जिद प्रोटेक्टेड है कि नहीं प्रोटेक्टेड है? अब लोग कहेंगे कि नहीं, इसके बाद तो प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ काबा प्रोटेक्टेड है। ये रीजनिंग बिल्कुल गलत है, और चाहे इसको आप छोटा करें या बड़ा करें, इसका माने क्लियर है।
ये भी गौर करने वाली बात है कि बेंच के तीसरे जज जस्टिस नज़ीर ने असहमति जताते हुए कहा कि इस्माइल फारूकी मामले में की गई टिप्पणियों को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि पहले दिए गए कई फैसलों की रोशनी में इस सवाल की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए कि क्या कोई क्रिया किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। जस्टिस नज़ीर की राय थी कि इस्माइल फारूकी मामले में की गई ये टिप्पणी कि मस्जिद इस्लाम का भिन्न हिस्सा नहीं है और मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि खुले स्थान में भी, पर्याप्त विचार विमर्श के बिना की गई थी और धार्मिक स्वतंत्रता देने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धर्म के लिए क्या ज़रूरी और अभिन्न माना जाए इसका समाधान होना चाहिए। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अदालत के फैसले पर राजनीतिक बहस और इसको किसी पक्ष की जीत और किसी अन्य पक्ष की हार कहना उचित नहीं है।
उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ऊपर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक विचित्र बात बता दूं। इस्माइल फारूकी का जजमेंट लगभग 24 वर्ष पुराना है, तो आज ये कहना बार बार कि किसी की पराजय हुई है या क्या विजय हुई है, ये इतना अजीबोगरीब बात है और ये दर्शाता है कि आपको कानून के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आज जो निर्णय आया वो सिर्फ इस संकीर्ण लिमिटेड मुद्दे पे था कि क्या उस पुराने 25 साल पुराने निर्णय को रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार किया जाए कि नहीं।
अदालत के समक्ष पेश इस बात पर कि इस्माइल फारूकी मामले में की गई टिप्पणियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया है। तीनों जजों ने सहमति जताई कि इस मत विभाजित फैसले में सिर्फ इन्हें निर्णायक कारक न माना जाए। बेंच ने रेस्पोंडेंट्स की ओर से की गई रेस जुडिकाटा अर्थात वो मामला जिस पर पहले ही सक्षम अदालत फैसला दे चुकी हो की याचिका को भी सर्वसम्मति से इस आधार पर खारिज कर दिया कि मौजूदा अपील ने अदालत के सामने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजने के पक्ष में एक और ठोस तर्क देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये मामला एक महत्वपूर्ण मामला है और पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ महत्वपूर्ण होने के आधार पर ही कई मामलों को बड़ी बेंचों के पास भेजा है। हालांकि ये तर्क भी केवल असहमत जज जस्टिस नज़ीर को ही आकर्षित कर सका जिन्होंने बहुविवाह और मादा जननांग विकृत के खिलाफ दायर मामलों को इसी आधार पर बड़ी बेंचों के पास भेजे जाने का उल्लेख किया। लेकिन बाकी दो जजों का मानना था कि आम तौर पर अपील को दो जजों की बेंच के पास भेजा जाता है लेकिन मामले के महत्व को देखते हुए ही मौजूदा याचिकाओं की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इस आदेश ने सबसे पहले तो समकालीन भारत के शायद सबसे चर्चित कानूनी विवाद अर्थात बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस को सुनने वाली बेंच की संख्या तय कर दी। साथ ही जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह भी तय कर दिया कि 29 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने भी अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
1994 से लेकर और 2018 तक क्या हिंदुस्तान की कोई एक मस्जिद 94 के जजमेंट के बेस पर वहां नमाज पढ़ने से रोका गया किसी को? उसका कोई असर उस पर नहीं था। आर्टिकल 25 में एक कंसेप्ट है एसेंशियलिटी ऑफ प्रैक्टिस। सुप्रीम उस जजमेंट में 94 में कहा गया कि इट इज नॉट एसेंशियल, इसलिए एक्विशन को उन्होंने कहा कि एक्विशन पर असर नहीं पड़ेगा। इस कंटेस्ट में था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लेरिफाई कर दिया।
इस्माइल फारूकी मामले में की गई टिप्पणियों को सिर्फ एक खास संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अपने रेफरल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र करते हुए उन टिप्पणियों के असर को भी कम कर दिया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों में साफ दिखा था और इससे याचिकाकर्ताओं को ज़रूर राहत मिली होगी जिन्होंने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में इस्माइल फारूकी मामले के प्रभाव की ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान केंद्रित कराया था। NDTV के कार्यक्रम प्राइम टाइम में वरिष्ठ संविधानविद और नासर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई आयामों से समीक्षा की।
पहले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें अगर ये तय करना है कि कोई चीज एसेंशियल है या नहीं तो हम उस धर्म के शास्त्रों को देखेंगे, उसकी स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, होली बुक को देखेंगे। बाद में जस्टिस गजेंद्र गटकर ने यह कह दिया हम ये देखेंगे कि क्या वो प्रैक्टिस रैशनल है। अब बताइए, धर्म कोई रैशनल तो नहीं होते, बिलीव्स तो ब्लाइंड बिलीव्स होती हैं। कोई ये कहता है कि मैं एक अल्लाह में यकीन रखता हूं तो उसने देखा नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ बिलीव है। यहां पे भी देखिए बाबरी मस्जिद के भी बार बार ये कहते हैं कमी के लोग कि भाई ये आस्था का सवाल है, इसमें लॉ नहीं देखा जाएगा। फिर एक दूसरे केस में केरला में एक पुलिस ऑफिसर दाढ़ी रखना चाहते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भाई दाढ़ी रखना मुसलमानों के लिए एसेंशियल नहीं है क्योंकि कुछ मुसलमानों के तो दाढ़ी नहीं है, तो फैजान मुस्तफा के दाढ़ी नहीं है और आपके किसी और बड़े जज के दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब दाढ़ी रखना इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ये गलत बात है। आपको कलकत्ता की चीज बताऊं, आनंद मार्गीज ये जो है कलकत्ता की स्ट्रीट पे न्यू डांस करना चाहते थे और ये सब जो है विष्णु भगवान मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो इनकी किताब है करिया करिया उसके 1958 का जो ओरिजिनल एडिशन है उसमें इस डांस का जिक्र नहीं है और 62वें का एडिशन में है, इसलिए हम इसको एसेंशियल नहीं मानेंगे। और अब ये देखिए इस्माइल फारूकी ने आके ये कह दिया कि मॉस्क जो है वो मुसलमान और इस्लाम धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। मैं ये आप कहना चाहता हूं कि एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है। एक तो पहले केस ये कहा गया था कि धार्मिक पुस्तकों को देख के बताया जाएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रैशनल देखेंगे। एक अजमेर दरगाह का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कोई चीज सुपरस्टिशियस है तो उसे एसेंशियल हिस्सा नहीं मानेंगे। कोर्ट इन झगड़ों में ना पड़े, कोर्ट ये कहे हम ये देखेंगे कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेटेबल नहीं है चाहे एसेंशियल भी हो तब भी हम उसकी इजाजत नहीं देंगे।
फैसले पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में अपना विचार व्यक्त किया।
द अलाहाबाद हाई कोर्ट हैड रॉन्गली गिवन अ जजमेंट बेस्ड ऑन द इस्माइल फारूकी एंड द अलाहाबाद हाई कोर्ट कुड नॉट ओवर रूल और ओवरटर्न अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इज व्हाई आई हैव ऑल द राइट एंड वी वेंट वी आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द इस्माइल फारूकी केस वॉज रॉन्गली डिसाइडेड विदाउट इवन लुकिंग एट द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। The Supreme Court today had given a majority judgment, a dissenting judgment. If you happen to read page number 57, paragraph 6.1, the Supreme Court has clearly said that what Allahabad High Court had decided is wrong. The Supreme Court has accepted that the masjid and mandir are of equal, they are equal. There is no difference between them. We still stand by the earlier demand of deciding this case after the parliament election, because day in day out the BJP is harping about it. And what is it about this May 2019? How is it that they know and I don't know that the judgment would come? What is it that we don't know? We want to know from the BJP that are you going to decide this case in your political office or in your shakha?
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई।
That there were parties in the court who were trying to delay and deter the Ram Temple case to the extent that there were lawyers like of the repute of Mr. Dhawan and Kapil Sibal who said that we would like to boycott the Supreme Court. One of them having even sent his black robe back to the Supreme Court that we will not, if the Supreme Court does not delay and defer this matter beyond the elections of 2019, we are going to boycott the court. They were reprimanded by the Supreme Court and finally they had to eat their egos and they had to come back to the highest court of country. There was a part where Kapil Sibal went ahead to say that you have to hear this case, including my good friend Mr. Ovesi, who also contended that this case should be heard only after the elections, that is 2019.
Babri Masjid ka mamla Bharat mein bahut lamba vivad hai aur iski jatiltaein बहुत अधिक हैं, जिसको दोनों पक्षों की ओर से हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये मामला अदालत में है।